अध्याय 14 ध्वनि विज्ञान। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। ध्वनि के अभाव में भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है, और जैसा हमने देखा है, भाषा विज्ञान का विषय ध्वन्यात्मक भाषा ही है। इसलिए सर्वप्रथम ध्वनि का विवेचन आवश्यक है। ध्वनि के तीन पक्ष हैं, पहला उत्पादन, दूसरा संवहन और तीसरा ग्रहण। इनमें उत्पादन और ग्रहण का संबंध शरीर से है और संवहन का वायु तरंगों से। वक्ता के मुख से निःसृत ध्वनि श्रोता के कान तक पहुंचती है। ध्वनि के उत्पादन के लिए वक्ता जितना आवश्यक है, उतना ही उसके ग्रहण के लिए श्रोता आवश्यक है। किंतु वक्ता और श्रोता के बीच यदि ध्वनि के संवहन का कोई माध्यम न हो तो उत्पन्न ध्वनि भी निरर्थक हो जाएगी। यह कार्य वायु तरंगों के द्वारा सिद्ध होता है। ध्वनि का उत्पादन या ग्रहण कैसे होता है, इसे अच्छी तरह समझने के लिए शरीर का थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक है। ध्वनि का संवहन वाला पक्ष भी तब तक अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता जब तक भौतिकी का थोड़ा बहुत ज्ञान न हो। बोलते तो सभी हैं, पर कैसे बोलते हैं, इसका उत्तर देना सबके लिए आसान नहीं है। ध्वनि कहाँ से कैसे उत्पन्न होती है, यह शरीर विज्ञान से परिचित व्यक्ति ही अच्छी तरह समझ सकता है, और शरीर विज्ञान से परिचित व्यक्ति भी तब तक इसे नहीं बता सकता जब तक उसने इस पर ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से विचार न किया हो। कारण कि शरीर विज्ञानी की दृष्टि ध्वनि विज्ञानी की दृष्टि से भिन्न होती है। ध्वनि विज्ञान के प्रसंग में वागेंद्रिय या भाषणेन्द्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि वाक अथवा भाषण की कुछ खास इंद्रियाँ हैं, किंतु हमारे शरीर में वागेंद्रिय या भाषणेन्द्रिय नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि है भी तो केवल कान, क्योंकि उसका उपयोग भाषा के ग्रहण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भाषण या बोलने का काम उन अंगों या इंद्रियों से लिया जाता है जिनका प्रधान उपयोग जीवन धारण के लिए होता है, जैसे मुंह खाने के लिए है, नाक श्वास लेने के लिए, आगे के दांत भोजन को काटने और बगल के दांत पीसने के लिए। जीभ भोजन की ग्राह्यता और अग्राह्यता का निर्णय करती है। होंठ फाटक का काम करते हैं, अन्यथा सोते समय द्वार खुला पाकर कोई भी कीड़ा मकोड़ा मुंह में घुस सकता है। प्रकृति ने इसका ख्याल रखा है कि सोते समय भी मनुष्य निरापद रूप से सो सके, इसीलिए मुंह पर होंठों का फाटक लगा दिया है, और सोने पर आप से आप बंद हो जाते हैं और आंखों पर पलकों का आवरण डाल दिया है जो नींद पर आँखों को ढक लेती है। कहने का तात्पर्य यह कि जिन इंद्रियों से हम बोलने का काम लेते हैं उनमें कोई भी केवल बोलने के लिए नहीं बनी, इसलिए वागेंद्रिय शब्द को गौण अर्थ में ही प्रयुक्त मानना चाहिए। इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारे शरीर में अनेक इंद्रियां हैं जिनसे हम दोहरे काम लेते हैं। एक ओर उनसे जीवन धारण होता है, दूसरी ओर ध्वनि की उत्पत्ति भी, जिससे भाषिक व्यवस्था संभव होती है। वागेंद्रियां। वागेंद्रियों की स्थिति और कार्य को ठीक से समझने के लिए शारीरिक रचना एवं क्रिया का थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से मानव शरीर निम्नलिखित तंत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला अस्थि तंत्र। अस्थि तंत्र हड्डियों का ढांचा है जो शरीर के लिए आधार का काम करता है। दूसरा पेशी तंत्र। पेशी तंत्र से अंगों के आकुंचन प्रसारण मोड़ने फैलाने का काम लिया जाता है। तीसरा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया द्वारा जीवन धारण में सहायक होता है। चौथा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भोजन के पाचन और शरीर के पोषण का साधन है। पांचवा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र पर रक्त संचार का भार है। छठा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का संबंध मल निष्कासन से है। सातवां तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का संवेदन या ज्ञान का उत्तरदायित्व है। सातवां अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र शरीर के संचालन के लिए भीतर ही भीतर कुछ रासायनिक तत्वों की व्यवस्था करता है। नौवां जनन तंत्र। जनन तंत्र का संबंध संतानोत्पत्ति से है। इन तंत्रों के कार्यों पर ध्यान देने से दो ही तंत्र ऐसे दिखते हैं जिनका संबंध भाषण से भी है, और वे हैं श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र। मुख्यतः वस्तुतः श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र बाहर और भीतर के छोरों पर ही एक दूसरे से अलग हैं, अन्यथा बीच में कंठ के पास मिले हुए हैं। नासिका के भीतर खींची गई श्वास वायु और मुख से भीतर गया भोजन कुछ दूर तक एक ही मार्ग से जाते हैं, किंतु गले के नीचे उतरने पर उनके मार्ग भिन्न हो जाते हैं। श्वास वायु श्वास नली की सहायता से फेफड़ों में पहुंच जाती है और भोजन भोजन नली की सहायता से आमाशय में। यदि धोखे से भोजन श्वास नली में पहुंच जाए तो तत्काल मृत्यु हो सकती है। इसलिए प्रकृति ने भोजन नली के द्वार पर एक आवरण दे रखा है जो भोजन निकलते समय श्वास नली के मुख को बंद कर देता है। इससे भोजन श्वास नली में न जाकर सीधे आमाशय में चला जाता है। जब कभी भूल से कोई कण श्वास नली के द्वार पर पहुंचता है तो तत्क्षण भीतर से वायु से बाहर फेंकने का प्रयास करती है, जिसे लोग सरकना कहते हैं। श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अवयव भाषण में काम आते हैं, नासिका विवर, स्वर तंत्र और फेफड़े। पाचन तंत्र के जिन अवयवों से हम भाषण का काम लेते हैं वे हैं मुख विवर और ग्रसनिका या गलबिल, गले का छेद। इस प्रकार इन दोनों तंत्रों के कुछ अवयव भाषा की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, जिन्हें वागेंद्रीय या भाषणेन्द्रीय के नाम से पुकारा जाता है। ध्वनियों के उत्पादन के लिए इनमें किससे क्या सहायता मिलती है यह जानने के लिए इनका स्थूल परिचय आवश्यक है। पहला, फेफड़े। मनुष्य जब तक जीता है तब तक श्वास निश्वास की क्रिया निरंतर चलती रहती है। नींद में बहुत सारे व्यापार बंद हो जाते हैं, फिर भी यह व्यापार बंद नहीं होता। इसके बंद होने का अर्थ है जीवन की समाप्ति। प्रश्वास यानी भीतर खींची गई हवा से गृहित ऑक्सीजन के द्वारा रक्त शोधन का कार्य होता है, और निश्वास यानी बाहर फेंकी गई हवा से कार्बन डाइऑक्साइड नामक दूषित तत्व शरीर से निकाला जाता है। जीवन के लिए ऑक्सीजन का ग्रहण जितना आवश्यक है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का निःसारण। क्षण भर भी ऑक्सीजन नहीं मिलने से दम घुटने लगता है, जिसका अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का विष शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यदि कुछ देर तक ऑक्सीजन न मिले तो मनुष्य का प्राणांत हो जाए। निःश्वास अर्थात बाहर निकलने वाले दूषित या निरर्थक वायु से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि ध्वनि या भाषा श्वसन क्रिया के उपजात यानी बाई प्रोडक्ट है। यह उपजात भी मानव सृष्टि के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी सारी बौद्धिक उपलब्धि इसी उपजात का परिणाम है। फेफड़े धौंकने का काम करते हैं। प्रश्वास और निःश्वास का क्रम सदा चलता रहता है, और जैसा अभी कहा गया है निःश्वास से ही ध्वनि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ध्वनि की उत्पत्ति में फेफड़े का प्रत्यक्ष उपयोग तो नहीं है, किंतु वही मूल स्थान है जहाँ से बाहर निकलने वाली वायु का उपयोग ध्वनि के उत्पादन के लिए किया जाता है। फेफड़े के ऊपर श्वास नली है जो दोनों फेफड़ों से संबद्ध रहती है। दूसरा, स्वर यंत्र। श्वास नली के ऊपरी भाग में स्वर यंत्र नाम का एक अवयव है। फेफड़े से निकली हुई वायु स्वर यंत्र से होकर ही बाहर जाती है। स्वर यंत्र के बीच होठों के आकार की दो मांसल झिल्लियां हैं जिन्हें स्वर तंत्री कहते हैं। ये झिल्लियाँ आमने सामने पीछे से आगे तक फैली हुई हैं, जो काफ़ी लचीली होती हैं। स्वर तंत्रियों के बीच के छिद्रों को कंठ द्वार या काकल कहते हैं। तंत्री शब्द से यह नहीं समझना चाहिए कि इनमें तार जैसा कुछ है। स्वर तंत्रियों की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं। क, स्वर तंत्रियों की सामान्य अवस्था वह है जिसमें से पृथक शिथिल निष्पंद पड़ी रहती हैं। इस अवस्था में श्वास निश्वास की क्रिया अविरत चलती रहती है, क्योंकि बीच का छिद्र अर्थात कंठ द्वार काकल खुला होता है, जिससे वायु फेफड़े में आती जाती रहती है। इसी अवस्था में अघोष ध्वनियों का उच्चारण होता है। ख, स्वर तंत्रियों की दूसरी अवस्था है जिसमें से वे परस्पर निकट आकर सड़ जाती हैं और निःश्वास वायु के निकलने के समय उनमें कंपन उत्पन्न होता है। स्वर तंत्रियों के सटे होने के कारण निःश्वास वायु धक्का देकर बाहर निकलती है, और इसलिए स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इस अवस्था में जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें घोष कहते हैं। स्वर तंत्रियों के कंपन को कानों में अंगुली देकर या कंठ मणि पर अंगुलियां रखकर अनुभव किया जा सकता है। ग, स्वर तंत्रियों की एक व्यवस्था यह भी है कि वे पास आ जाती हैं पर सटती नहीं, और इस तरह वायु के आने जाने का मार्ग अत्यंत संकीर्ण हो जाता है। इस अवस्था में स्वर तंत्रियां न तो इतनी पृथक रहती हैं जितनी प्रथम अवस्था में, और न इतनी संकीर्ण जितनी द्वितीय अवस्था में। यह दोनों की मध्यवर्ती अवस्था है, न बिल्कुल खुली न बिल्कुल सटी। इस अवस्था में फुसफुसाहट वाली ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनका प्रयोग हम किसी के कान में कुछ कहते समय करते हैं। तीसरा, ग्रसनिका। ग्रसनिका का दूसरा और प्राचीन नाम गलबिल है, जिसकी स्थिति कंठ छिद्र के ऊपर और मुख के नीचे है। आईने में मुख खोलकर देखने से गले की पिछली दीवार दिखाई देती है, वह ग्रसनिका की ही दीवार है। ध्वनि के उच्चारण में पहले ग्रसनिका का कोई महत्व नहीं माना जाता था, किंतु अब माने जाने लगा है। ग्रसनिका के विभिन्न आकार ग्रहण करने से स्वरों के उच्चारण में विशेषकर उनके तान में अंतर पड़ता है। चौथा, मुख। ध्वनियों के उत्पादन में मुख का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण योग है। केवल मुख न कहकर इसे मुख विवर कहना अधिक उपयुक्त है। मुख विवर में ऊपर गोलाकार छत है और नीचे जिह्वा। छत के तीन भाग किए जा सकते हैं। सबसे पीछे कोमल तालु है जिसमें एक छोटा सा मांसपिंड लटकता दिखता है। उस मांसपिंड को अलिजिह्वा या काकल कहते हैं। कोमल तालु ऊपर नीचे आ जा सकता है। ऊपर जाकर वह नासिका मार्ग को बंद कर देता है और नीचे आकर खोल देता है। जब तक कोमल तालु नीचे नहीं आएगा तब तक नाक से खींची गई हवा फेफड़े में नहीं जा सकती। कोमल तालु के आगे कठोर तालु है जो संपूर्ण तालु का प्राय मध्य भाग है और आकार में वर्तुल तथा अस्थिमय है। कठोर तालु से आगे बढ़ने पर दंत कूट मिलता है जो ऊपर से दांतों के पीछे का खुरदरा हिस्सा है। इसे ही मूर्धा भी कहते हैं। मुख की छत के इन तीन भागों से आगे बढ़ने पर दंत पक्तियां मिलती हैं और उनसे आगे ओष्ठ। ध्वनियों के उच्चारण में इन सबका उपयोग होता है। ध्वनियों के उच्चारण में यदि किसी इंद्रिय का सबसे अधिक उपयोग होता है तो जिह्वा का। जिह्वा के भी चार भाग माने गए हैं। जिह्वा पश्च, जिह्वा का पिछला भाग जो कोमल तालु के सामने पड़ता है, जिह्वा पृष्ठ कठोर तालु के सामने, जिह्वाग्र दंतकूट के सामने और जिह्वाणी जिह्वा का अग्रिम छोर। मुख विवर की अनेक आकृतियों तथा कोमल तालु, जिह्वा, ओष्ठ आदि के संचालन में बहुत सारी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। पांचवा, नासिका विवर। नासिका और मुख की छत के बीच जो रिक्त स्थान है उसे ही नासिका विवर कहते हैं। कोमल तालु और अलिजिह्वा को ऊपर नीचे करके नासिका विवर को पूर्णतः या अंशतः खोला या बंद किया जा सकता है। नासिका का उपयोग अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में होता है। ध्वनियों का वर्गीकरण। मनुष्य के कंठ में अनंत ध्वनियों के उत्पादन की क्षमता है। इसका पता तो बोलते समय चलता ही है, लेकिन उससे भी अधिक गाने के समय चलता है। ध्वनियों की जितनी सूक्ष्म, कितनी मोहक और कितनी विविध भंगिमाएं हो सकती है, इसका ज्ञान संगीत से होता है। यहाँ संगीतिक ध्वनियों का विवेचन इष्ट नहीं है। हमें केवल उन ध्वनियों पर विचार करना है जो भाषिक दृष्टि से उपयोगी है। ध्वनियों के वर्गीकरण के तीन प्रमुख आधार हैं। पहला, स्थान। दूसरा, करण। और तीसरा, प्रयत्न। स्थान, करण और प्रयत्न के अपेक्षित महत्व को समझने के लिए कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं। क और प का अंतर स्थानकृत है, किंतु क और ख का अंतर प्रयत्नकृत, क्योंकि क और ख का स्थान एक ही है, कंठ। एक ही स्थान से उच्चरित होने पर क ख में, ख ग में और ग घ में अंतर हो जाता है। यह अंतर प्रयत्न के कारण है, किंतु क च ट त प का अंतर प्रयत्न के कारण नहीं, स्थान के कारण है। ये ध्वनियाँ विभिन्न स्थानों से उच्चरित होती हैं। करण का अर्थ है इंद्रिय। जिस तरह एक ही स्थान या प्रयत्न से सभी ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता, उसी तरह करण भी एक ही नहीं रहता। स्थान और करण का भेद यह है कि स्थान अचल है किंतु करण चल है। उदाहरणार्थ, तालु को स्थान कहेंगे किंतु जिह्वा को करण, क्योंकि जिह्वा की गतिशीलता से अनेक स्थानों का स्पर्श होता है और अनेक प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। स्थान, निश्वास वायु को जहाँ अवरुद्ध या बाधित करते हैं उसे स्थान कहते हैं। ओष्ठ से लेकर कंठच्छद तक अनेक स्थान हैं। इनका परिचय दोनों तरह से प्राप्त कर सकते हैं, बाहर से भीतर की ओर या भीतर से बाहर की ओर आकर। निम्नलिखित स्थान उच्चारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला, काकल। दूसरा, कंठ। तीसरा, तालु। चौथा, मूर्धा। पांचवा, वर्ष। छठा, दंत। सातवां, ओष्ठ। इन स्थानों में उच्चरित ध्वनियाँ क्रमशः पहला काकल्य, दूसरा कंठ, तीसरा तालव्य, चौथा मूर्धन्य, पांचवा वर्ष, छठा दंत और ओष्ठ कहलाती हैं। पहला काकल्य ध्वनि में मुख विवर खुला रहता है और निःश्वास बंद कंठद्वार को वेग से खुलकर बाहर निकलता है। दूसरा, कंठ ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। तीसरा, तालव्य ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वाग्र कठोर तालु का स्पर्श करता है। चौथा, मूर्धन्य ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक प्रायः उलटकर मूर्धा का स्पर्श करती है। मूर्धन्य ध्वनियों के लिए जिह्वा का उलटना अनिवार्य नहीं है। जिह्वा की नोक से सीधे भी मूर्धा का स्पर्श करने से मूर्धन्य ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। पांचवा, वर्ष ध्वनियों के उच्चारण में जीवा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। दंत ध्वनियों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपर की दंत पंक्तियों का स्पर्श करती है। सातवां, ओष्ठ ध्वनि के दो भेद हो जाते हैं, क दंत्योष्ठ और द्रव्योष्ठ। क दंत्योष्ठ, जब नीचे का ओष्ठ ऊपर की दंत पंक्तियों को छूता है तो जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उसे दंत्योष्ठ कहते हैं। ख द्रव्योष्ठ, जब दोनों ओष्ठ एक दूसरे का स्पर्श करते हैं तो द्रव्योष्ठ ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। प्रयत्न, प्रयत्न मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क अभ्यांतर और बाह्य। अभ्यांतर और बाह्य प्रयत्न का संबंध मुखवीवर के बाहरी और भीतरी भाग से है। मुखवीवर के भीतर ओष्ठ से कंठ तक को प्रयत्न किए जाते हैं वह अभ्यांतर कहलाते हैं, और कंठ के बाद नीचे जो प्रयत्न होते हैं बाह्य कहलाते हैं। एक दृष्टि से कंठ के नीचे के प्रयत्न अधिक अभ्यांतर कहलाने चाहिए, किंतु उनकी बाह्यता मुखवीवर की दृष्टि से मानी जाती है। मुखवीवर को यदि सीमा मान ले तो जिस तरह ओठों का बाहर का भाग बाह्य कहलाएगा वैसे ही कंठ के भीतर का भी। क अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न चार माने गए हैं। पहला स्पृष्ट, दूसरा ईशस्पृष्ट, तीसरा विवृत और समृत। पहला स्पृष्ट, स्पृष्ट शब्द का अर्थ है स्पर्श किया गया। वर्णाक्षरों का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के 25 अक्षरों का उच्चारण प्रयत्न स्पृष्ट माना गया है, क्योंकि इनमें जिह्वा कंठ के से लेकर ओठ तक अनेक स्थानों का स्पर्श करती है। दूसरा ईशस्पृष्ट, ईशस्पृष्ट का अर्थ है थोड़ा स्पर्श किया गया। कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनमें स्थान और करण का पूरा स्पर्श नहीं होता बल्कि हल्का सा स्पर्श होता है, उन्हें ही ईशस्पृष्ट कहते हैं। जैसे य व, ईशस्पृष्ट को ही आजकल की पारिभाषिक शब्दावली में अर्धस्वर कहते हैं, पहले इन्हें ही अंतस्थ कहते थे। अंतस्थ का अर्थ है बीच में रहने वाला, अर्थात वे ध्वनियाँ जिनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की हो। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से अंतस्थ और अर्धस्वर में कोई अंतर नहीं है, अर्धस्वर कहें या अंतस्थ बात एक ही है। तीसरा विवृत, विवृत का अर्थ है खुला हुआ। विवृत प्रयत्न की आवश्यकता स्वरों के उच्चारण में होती है, क्योंकि जैसा हम आगे देखेंगे स्वरों का उच्चारण करते समय किसी स्थान का स्पर्श नहीं होता बल्कि मुखवीवर बिल्कुल विवृत अर्थात खुला रहता है। चौथा समृत, समृत विवृत का उल्टा है। विवृत का अर्थ खुला हुआ और समृत का बंद। समृत प्रयत्न का व्यवहारिक उपयोग अधिक नहीं पाया जाता, क्योंकि मुखवीवर यदि सर्वथा समृत यानी बंद ही रहे तो ध्वनियों का उच्चारण सुनाई नहीं पड़ सकता। ख बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न 11 हैं। पहला विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा घोष, छठा घोष, सातवा अल्प प्राण, आठवा महाप्राण, नवा उदात्त, दसवा अनुदात्त और ग्यारहवा स्वरित। बाह्य प्रयत्न मुख्यतः स्वर तंत्री में होते हैं। इसमें तीन बातों का ध्यान दिया जाता है, पहला स्वर तंत्री की अवस्था, दूसरा प्राणवायु की गति और तीसरा स्वर तंत्री की अवस्था एवं प्राणवायु की गति के कारण होने वाला घर्षण। स्वर तंत्री की अवस्था के आधार पर विवार एवं संवार प्रयत्न, प्राणवायु की गति के आधार पर श्वास एवं नाद प्रयत्न तथा दोनों को मिलाकर होने वाले घर्षण के आधार पर अघोष एवं घोष प्रयत्न होते हैं। प्राणवायु की मात्रा अल्प प्राण एवं महाप्राण का निर्धारण करती है। पहला विवार, विवार का अर्थ है खुलना। जब स्वर तंत्रिया पूर्णतः विवृत खुली रहती हैं तो विवार प्रयत्न होता है। दूसरा संवार, संवार का अर्थ है बंद होना, इनमें स्वर तंत्रियाँ बंद रहती हैं। तीसरा श्वास, वाग इंद्रियों की चर्चा के प्रसंग में हम देख चुके हैं कि स्वर तंत्रियों की स्थितियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो खुली और दूसरी बंद। खुली स्थिति में श्वास निश्वास की क्रिया निर्बाध रूप से चलती रहती है, निश्वास का निर्बाध निकलना श्वास प्रयत्न के भीतर आता है। चौथा नाद, श्वास प्रयत्न में निश्वास निर्बाध रूप से बाहर निकल जाता है, किंतु नाद में स्वर तंत्रियां मिलती हैं और निश्वास में बाधा उत्पन्न होती है, स्वर तंत्रियों के द्वारा बाधित होने से ही नाद उत्पन्न होता है। पांचवा अघोष, श्वास प्रयत्न में घर्षण के अभाव को ही अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष हैं। छठा घोष, नाद प्रयत्न में स्वर तंत्री में होने वाले घर्षण का दूसरा नाम घोष है। नागरी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण घोष हैं। सातवां, अल्प प्राण। प्राण का अर्थ है वायु और अल्प का अर्थ है थोड़ा, अर्थात थोड़ी वायु जिसमें प्रयोग हुआ प्रयत्न अल्प प्राण कहलाएगा। कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनमें वायु का प्रयोग अत्यल्प होता है, जैसे क, प। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण हैं। आठवां, महाप्राण। महाप्राण में वायु का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए इसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण हैं। क, प की अपेक्षा ख, फ में स्पष्ट ही प्राणत्व वायु का अंश अधिक है। यही कारण है कि कुछ लिपियों में महाप्राण वर्णों के लिए स्वतंत्र संकेत न रहने के कारण अलग से हकार प्राणत्व जोड़कर महाप्राण वर्ण लिखते हैं, जैसे अंग्रेजी में के एच से ख, पी एच से फ। उर्दू में भी काफ और पे में दुषश्मी हे जोड़कर ख, फ लिख ले आदि लिखते हैं, क्योंकि देवनागरी में के समान इन लिपियों में महाप्राण वर्णों के लिए अलग संकेत नहीं है। उदात, अनुदात और स्वरित्र का संबंध केवल स्वरों से है। नौवां, उद्दात। उद्दात का अर्थ है ऊपर उठा हुआ, अर्थात आरोही स्वर। दसवां, अनुदात। अनुदात का अर्थ है नीचे गिरा हुआ, अर्थात अवरोही स्वर। ग्यारहवां, स्वरित्र। स्वरित्र का अर्थ है सम, अर्थात जो न आरोही और जो न अवरोही। करण। करण उन इंद्रियों को कहते हैं जो गतिशील होती। जैसा कहा जा चुका है, स्थान और करण में वस्तुतः स्थिरता और चलता का अंतर होता है। भाग इंद्रियां तो दोनों ही हैं, किंतु एक स्थिर रहती है और दूसरी गतिशील। इस दृष्टि से करण की श्रेणी में निम्नलिखित इंद्रियों को रख सकते हैं। पहला, अधरोष्ठ। ऊपर का ओष्ठ बहुत कुछ अचल रहता है, किंतु नीचे का ओष्ठ अनेक रूप धारण करता है। साथ ही कभी कभार ऊपर के ओष्ठ को छूता है, कभी ऊपर के दंत पक्ति को। इस तरह वह कर्ण की कोटि में आ जाता है। दूसरा, जिह्वा। जिह्वा में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आगे पीछे नीचे ऊपर चलकर सबसे अधिक ध्वनियां उत्पन्न करती है। उसके विभिन्न व्यापारों की चर्चा स्वरों और व्यंजनों के विश्लेषण में प्रसंग में होगी। तीसरा, कोमल तालु। कोमल तालु स्थान भी है और करण भी। जिह्वा की तुलना में वह स्थान है, क्योंकि जिह्वा का उसे स्पर्श होने पर अनेक ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, किंतु वह स्वयं नीचे ऊपर आकर अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में सहायक बनता है। इस गतिशीलता के कारण उसे करण भी मान सकते हैं। चौथा, स्वरतंत्री। जिह्वा के बाद करण की दृष्टि से स्वरतंत्रियां ही महत्व की ठहरती हैं, क्योंकि कभी खुलकर, कभी बंद होकर, कभी कंपन के द्वारा ध्वनियों में परिवर्तन की उनमें अपार क्षमता है। स्थान, करण और प्रयत्न के मेल से अनंत ध्वनियां उत्पन्न हो सकती हैं। आगे स्वर और व्यंजन ध्वनियों की चर्चा से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। ध्वनियों के भेद। ध्वनियों के दो प्रसिद्ध भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन का अंतर प्रायः यह बताया जाता है कि स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं हो, और व्यंजन वह जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े। तात्पर्य की प्राचीन परिभाषा के अनुसार स्वर का स्वतः उच्चारण होता है और व्यंजन का स्वर की सहायता से। स्वर की व्युत्पत्ति है स्वतो राजन्ते, अर्थात जो स्वयं कायम रहे, किंतु यह परिभाषा सर्वथा ग्राह्य नहीं है। उदाहरणार्थ संयुक्त या स्वर शब्द को ले लें। संयुक्त में क, त का संयोग है, अर्थात क में कोई स्वर नहीं है, फिर भी इसका उच्चारण होता है। इसी तरह स्वर में स में कोई स्वर नहीं है, फिर भी उसके उच्चारण से कोई अस्पष्टता नहीं है। एक शब्द और लीजिए, कासनर्य, जिसका अर्थ है संपूर्णता। इसमें र, त, स, न के चार व्यंजन बिना स्वर के हैं, फिर भी उनका उच्चारण स्पष्टता से किया जाता है। इससे सिद्ध है कि व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता अनिवार्य नहीं है। आधुनिक दृष्टि से स्वर और व्यंजन की परिभाषा निम्नलिखित है। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय निःश्वास में कहीं कोई अवरोध नहीं होता। व्यंजन में वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय निःश्वास में कहीं न कहीं अवरोध होता है। स्वरों का वर्गीकरण। स्वर ध्वनियों में जो भेद दिखाई पड़ता है उसके अनेक कारण हैं। क, जिह्वा की ऊंचाई। ख, जिह्वा का उत्थापित भाग। ग, ओष्ठों की स्थिति। स्वर की परिभाषा में कहा गया है कि निःश्वास में बिना अवरोध के जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वे स्वर कहलाती हैं। अर्थात निश्वास वायु बिना किसी अवरोध या बाधा के मुख विवर से बाहर निकल जाती है। फिर अ ई उ ए ओ आदि का भेद कैसे होता है, इस भेद के जनक उपयोग तीन कारण हैं। क जिह्वा की ऊंचाई के अनुसार निश्वास वायु जब मुख विवर से बाहर निकलती है तो उसमें अवरोध तो नहीं किया जाता, किंतु जिह्वा को ऊपर उठाकर निश्वास के निर्गम मार्ग को कुछ संकीर्ण अवश्य कर दिया जाता है। यह संकीर्णता कहीं अपेक्षाकृत कम होती है और कहीं अधिक। इस दृष्टि से मुख विवर की स्थिति चार प्रकार की होती है और उसके अनुसार स्वरों के भी चार भेद हो जाते हैं। पहला विवृत, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा अर्धसंवृत और चौथा संवृत। पहला विवृत, विवृत का अर्थ है खुला। जब जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच अधिक से अधिक दूरी रहती है तो विविध ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जैसे आ। दूसरा अर्धविवृत, अर्धविवृत में विवृत की अपेक्षा जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी थोड़ी कम हो जाती है। अर्धविवृत स्वरों के उदाहरण हैं आए औ। तीसरा अर्धसंवृत, जब संवृत की अपेक्षा जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी अधिक रहती है तो अर्धसंवृत ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जैसे ए ओ। चौथा संवृत, जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच कम से कम दूरी रहने पर जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें संवृत कहते हैं, जैसे ई ई उ उ। ख जिह्वा के उत्थापित भाग के अनुसार, वाक इंद्रियों की चर्चा के प्रसंग में हमने देखा है कि व्यवहारिक दृष्टि से जिह्वा के अनेक भाग हैं, जैसे अग्रपश्च मध्यपश्च आदि। इनमें जो भाग ऊपर उठकर निश्वास के निर्गम मार्ग को संकीर्ण या परिवर्तित करता है उसके अनुसार स्वरों का भेद हो जाता है। पहला जिह्वा के अग्रभाग को उठाकर जिन स्वरों का उच्चारण होता है वे हैं ई ई ए ऐ, इसी से इन्हें अग्रस्वर कहते हैं। दूसरा जिह्वा के मध्य भाग को उठाकर केंद्रीय स्वर का उच्चारण होता है जिसका उदाहरण है ओ। तीसरा जिह्वा के पश्चिम भाग को उठाकर आ उ उ ओ औ का उच्चारण होता है जिन्हें पश्च स्वर कहते हैं। स्पष्ट है कि अग्रपश्च आदि का विभाजन जिह्वा के तत्तत् भाग से संबद्ध है। जहाँ जिह्वाग्र से काम लेते हैं वहाँ अग्रस्वर और जहाँ जिह्वा पश्च से काम लेते हैं वहाँ पश्च स्वर। ग ओष्ठों की स्थिति के अनुसार, उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः जिह्वा से कम महत्व ओष्ठों का नहीं है। निःश्वास का नियमन भीतर जिह्वा करती है और बाहर ओष्ठ, इसलिए प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जिह्वा के साथ ओष्ठ का भी योगदान होता है। ओष्ठों की स्थिति अनेक प्रकार की होती है जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं। पहला प्रसृत, ओष्ठों की प्रसृत स्थिति वह है जिसमें वे स्वाभाविक रूप से स्थित रहते हुए खुले होते हैं। इस स्थिति को अंग्रेजी में फ्लैट कहते हैं। ई ई ए आय का उच्चारण ओष्ठों की प्रसृत स्थिति में ही होता है। दूसरा वर्तुल, ओष्ठों को थोड़ा आगे निकालकर जब गोलाकार कर लेते हैं तो वह वर्तुल होता है। उ उ ओ औ के उच्चारण में वर्तुल स्थिति सहायक होती है। तीसरा अर्धवर्तुल, पूरा गोलाकार न होकर जब ओष्ठ पीछे आधे गोलाकार होते हैं तो कुछ स्वरों का उच्चारण होता है, जैसे आ। व्यंजनों का वर्गीकरण, स्थान करण प्रयत्न आदि का स्पष्टीकरण पहले हो चुका है, उन्हें ध्यान में रखने पर व्यंजनों का वर्गीकरण सुगम हो जाता है। स्थान के आधार पर व्यंजनों के कंठ तालव्य मूर्धन्य आदि भेद होते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित भेद हैं। पहला स्पर्श, दूसरा स्पर्श संघर्षी, तीसरा संघर्षी, चौथा पार्श्विक, पांचवां लोड़ित, छठा उत्प्रेक्षित, सातवां अंतस्थ या अर्धस्वर, आठवां अनुनासिक। पहला स्पर्श, स्पर्श उन ध्वनियों को कहते हैं जिनमें जिह्वा का मुख विवर के ऊपरी भाग से कहीं न कहीं स्पर्श होता है। इस दृष्टि से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग स्पर्श ध्वनियां हैं। दूसरा स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी ध्वनियों के उच्चारण में स्पर्श के समय निश्वास वायु के निर्गम में हल्का सा संघर्षण भी हो जाता है, इसलिए इन ध्वनियों को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। कुछ भाषा विज्ञानी हिंदी की च छ ज झ ध्वनियों को स्पर्श संघर्षी मानते हैं, पर यह वस्तुतः स्पर्श संघर्षी न होकर स्पर्श ही है। स्पर्श संघर्षी के उदाहरण होंगे यच्चा और ज्येष्ठ और च और जे इनके उच्चारण में स्पर्श के साथ घर्षण भी होता है। संस्कृत के पच्यते शब्द में च स्पर्श संघर्षी का उदाहरण है। ग्लीसन ने भी हिंदी की च छ ज झ ध्वनियों को स्पर्श ही माना है, स्पर्श संघर्षी नहीं। तीसरा, संघर्षी। संघर्षी ध्वनियों में निश्वास वायु के निर्गम का मार्ग जीवा के द्वारा अत्यंत संकीर्ण कर दिया जाता है और वायु रगड़ खाकर बाहर निकलती है। रगड़ या संघर्ष के प्रधानता के कारण ही इन ध्वनियों को संघर्षी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं श, श, स। चौथा, पार्श्विक। पार्श्विक ध्वनि के उदाहरण में जीवा की नोक मूर्धा को छूती है और निश्वास वायु दोनों पार्श्वों के बाहर निकलती है। पार्श्विक का उदाहरण है ल। पांचवा, लोड़ित। लोड़ित ध्वनियों के उच्चारण में जीवा की नोक वर्ष पर एक या अनेक बार ठोकर मारती है। र लोड़ित ध्वनि है। छठा, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु के किसी भाग को झटके से मार कर हट जाती है, जैसे अड़। सातवां, अंतस्थ या अर्धस्वर। वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा से न तो पूरी तरह स्पर्श होता है और न स्वरों के उच्चारण के समान पार्थक्य ही रहता है। य का उच्चारण करने के लिए जिह्वा के अग्रभाग को कठोर तालु की ओर उठाते हैं पर तालु का स्पर्श नहीं करते। इसी तरह व का उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ पास आ जाते हैं पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। य व में स्वर और व्यंजन दोनों का वैशिष्ट्य रहने से इन्हें अंतस्थ या स्वर कहते हैं। आठवां, अनुनासिक। ध्वनियों के उच्चारण में निःश्वास वायु मुख विवर के साथ नासिका विवर से भी निकलती है। नागरी वर्णमाला में वर्णाक्षरों के अंतिम अक्षर अंग, इंग, अड़, न, म अनुनासिक के उदाहरण हैं। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों के वर्गीकरण के 5 आधार बताए गए हैं, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। तेषां विभागः पंचधा स्मृतः, स्वरतः, कालतः, स्थानात्, प्रयत्न अनुप्रदनातः। पाणिनीय शिक्षा। स्वर और काल की चर्चा आगे होगी, स्थान का विवेचन हो चुका है। प्रयत्न शब्द से जहाँ अभ्यांतर प्रयत्न अभिमत है और अनुप्रदान से बाह्य प्रयत्न। ध्वनियों के गुण। पहले हमने स्थान, करण और प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के उच्चारण और वर्गीकरण का विचार किया है। यहाँ उनके कुछ सामान्य गुणों पर विचार करेंगे। ध्वनियों के उच्चारण के समय स्थान, करण, प्रयत्न से भिन्न और कुछ और भी तत्व काम करते हैं जिनका ज्ञान और विवेचन आवश्यक है। मात्रा। मात्रा का संबंध काल से है। काल का वह अंश जो किसी ध्वनि के उच्चारण में लगता है मात्रा कहलाता है। हमारे यहाँ 3 मात्राएँ मानी जाती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व को एक मात्रिक, दीर्घ को द्विमात्रिक और प्लुत को त्रिमात्रिक कहा गया है। अर्थात ह्रस्व का दुगुना समय दीर्घ के उच्चारण में और तिगुना समय प्लुत के उच्चारण में लगता है। वस्तुतः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का यह मात्राकृत भेद बहुत कुछ स्थूल है। यही बात तो यह है कि मात्रा का कोई निश्चित मान नहीं है। दूसरी बात यह कि बहुत सारी ध्वनियाँ साधारणतः दीर्घ मानी जाती हैं पर उनका भी उच्चारण ह्रस्व जैसा होता है। तीसरी बात यह है कि एक ही ध्वनि का विभिन्न संदर्भों में उच्चारण भिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को 1, 2 और 3 मात्राओं से संबंध न मानकर सापेक्ष मानना चाहिए। एक ही ध्वनि किसी अन्य ध्वनि की तुलना में दीर्घ भी हो सकती है और ह्रस्व भी। एक बात और, किसी एक भाषा की ह्रस्व ध्वनियाँ दूसरी भाषा में दीर्घ मानी जा सकती हैं और दीर्घ ध्वनियाँ ह्रस्व। छंद शास्त्र में ह्रस्व ध्वनियों भी विशेष परिस्थितियों में दीर्घ निगुरु हो जाती हैं। संयुक्त व्यंजनों के पूर्व के ह्रस्व ध्वनियाँ भी गुरु मानी जाती हैं। उदाहरणार्थ गद्य या पद्य में ग या प ध्वनि ह्रस्व है किंतु उसके आगे द्य का संयोग है, इसलिए उसका उच्चारण गुरु होता है, जो प्रकारांतर से दीर्घ ही माना जाएगा। इसी प्रकार दादा, मामा, बाबा, चाचा आदि शब्दों में पहले आकार की अपेक्षा दूसरे आकार का उच्चारण ह्रस्व होता है। यह ह्रस्वता कभी कभी इतनी अधिक हो जाती है कि दूसरी ध्वनि पहली ध्वनि में मिल जाती है। इससे दादा केवल दा जैसा या चाचा केवल चा जैसा सुनाई पड़ता है। प्लुत को त्रिमात्रिक माना गया है, जिसका प्रयोग संबोधन में किसी दूसरे को दूर से पुकारने में होता है। दूर से पुकारने में सदा त्रिमात्रिकता का पालन होता हो ऐसा नहीं देखा जाता। खेत या मैदान में जब किसी को पुकारते हैं अथवा नदी के तट पर एक तट पर खड़े हो दूसरे तट से किसी नाव को लाने के लिए आवाज़ लगाते हैं तो वहाँ अंतिम स्वर का उच्चारण काफी देर तक करते हैं, जो त्रयमात्रिकता की सीमा पार कर जाता है। इसलिए आरंभ में कहा गया है कि मात्रा संबंधी संख्या निर्देश स्थूल दृष्टि से ही ग्राह्य हैं। यद्यपि सामान्यतः आदि मात्रा का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु व्यावहारिक रूप में आदि मात्रा पर्याप्त रूप में पाई जाती है। उदाहरणार्थ अल्प, वित्त, जन आदि शब्दों में ल, त, न का उच्चारण आधा ही होता है। भारत के प्राचीन ध्वनि विज्ञानी इससे अपरिचित नहीं थे, जैसा तस्यादित उद्धार्थ मर्दहरस्वम अष्टाध्यायी अथवा अर्धमात्रालागमम पुत्रोत्सवम मन्यते वैयाकरणा वाली प्रसिद्ध उक्ति से स्पष्ट है। यदि अधिक सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो ध्वनियों के उच्चारण में चौथाई मात्रा का उपयोग भी पाया जा सकता है, जैसा कुम्हार में के मो में। स्वर स्वर निर्भर करता है ध्वनि के उत्पन्न करने वाले कंपन की आवृत्ति पर। समय विशेष में कंपन जितना अधिक होगा स्वर उतना ही उच्च होगा, और कंपन जितना कम होगा स्वर उतना ही निम्न होगा। कंपन की आवृत्ति का संबंध स्वर तंत्रियों के तनाव या फैलाव से है। जब आवृत्ति अधिक होती है तो स्वर तंत्रियां तन जाती हैं, और जब आवृत्ति कम होती है तो स्वर तंत्रियां ढीली पड़ जाती हैं। स्वर की उच्चता और निम्नता को इच्छा अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा अपने स्वर को जितना उच्च संगीतज्ञ कर सकता है उतना साधारण व्यक्ति नहीं। तनाव के अतिरिक्त स्वर का संबंध स्वर तंत्रियों के आकार से भी है। जिसकी स्वर तंत्रियां छोटी होती हैं उसका स्वर उच्च होगा, जैसे महिलाओं और बच्चों का। सामान्यतः स्वर तीन माने जाते हैं, उच्च, निम्न और सम। उच्च में स्वर नीचे से ऊपर जाता है, निम्न में ऊपर से नीचे आता है, और सम में बराबर रहता है। इसको ध्वनि विज्ञान में आरोही, अवरोही और सीधी रेखाओं में अंकित किया जाता है, जैसे उच्च स्वर, निम्न स्वर और सम स्वर। पहले कहा जा चुका है कि वैदिक भाषा स्वर प्रधान थी, इसलिए उसमें स्वरों का अनिवार्य प्रयोग होता था, जिन्हें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहते थे, जिन्हें प्रायः उच्च, निम्न और सम स्वरों के समकक्ष माना जा सकता है। स्वरों का प्रयोग केवल ध्वनियों में ही नहीं शब्दों और वाक्यों में भी होता है। इसे काको भी कहते हैं। प्रेम, घृणा, क्रोध, आश्चर्य, दुख, घबराहट, प्रश्न, निषेध आदि व्यक्त करने के लिए आवश्यकता अनुसार शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, जिससे एक ही शब्द या वाक्य अनेक अर्थ हो जाते हैं। आघात, आघात का अर्थ है चोट। आघात दो प्रकार का होता है, एक स्वर या तान का प्रयोग करते हैं और दूसरे में बल या श्वास वायु का। इन्हें क्रमशः स्वराघात और बलाघात कहते हैं। स्वर के समान आघात भी किसी ध्वनि शब्द या पूरे वाक्य में हो सकता है। तान या मात्रा के अपरिवर्तित रहते हुए भी आघात में अंतर पड़ सकता है। बलाघात में किसी ध्वनि पर श्वास वायु का विशेष धक्का देकर उच्चारण करते हैं, और स्वराघात में स्वर की उच्चता का प्रयोग कर। वृत्ति, वृत्ति का अर्थ है क्षिप्रता यानी स्पीड। ध्वनि के उच्चारण में जिस तरह मात्रा, स्वर और आघात का महत्व है, उसी तरह वृत्ति का भी। ध्वनि गुणों की में वृत्ति की चर्चा पाश्चात्य विद्वानों ने नहीं की है, किंतु यजुः शाखी पाणिनीय शिक्षा में इसका उल्लेख है। वृत्ति के तीन भेद हैं, द्रुत, मध्यम, विलंबित। बोलने की वृत्ति या तो द्रुत क्षिप्र होती है या विलंबित यानी मंद, या दोनों की मध्यवर्ती, न द्रुत न विलंबित। वृत्ति का सम्यक निर्वाह न होने से उच्चारण एवं अर्थबोध दोनों बाधित होते हैं। स्वयं अभ्यास के लिए द्रुत, दूसरे से बात करने के लिए मध्यम और अध्यापन के लिए विलंबित वृत्ति प्रशस्त मानी गई है। अर्थाभ्यास्तार्थे द्रुताम वृत्ति प्रयोगार्थे तो मध्यमाम, शिष्यामाणुपदेशार्थे कर्याद वृत्ति विलंबिताम पाणिनीय शिक्षा। किसी भाषा के समुचित अध्ययन के लिए उसकी उच्चारण प्रक्रिया का परिचय ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी ध्वनियों के गुणों, मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति का ज्ञान भी अनिवार्य है, क्योंकि ये गुण सभी भाषाओं में एक जैसे नहीं होते। इसीलिए एक भाषा को बोलने वाला जब दूसरी भाषा बोलने लगता है तो अपनी भाषा के गुणों को उस भाषा पर आरोपित कर देता है, इससे भाषा की अबोध्यता बढ़ती है। जब कोई बंगाली या मद्रासी अंग्रेजी या हिंदी बोलने का प्रयास करता है तो उसका उच्चारण अपनी भाषा के ध्वनि गुणों से नियंत्रित होता है। भारत में ध्वनि गुणों का अत्यधिक महत्व माना गया था, जैसा इस श्लोक में स्पष्ट है। दुष्ट शब्द स्वर तो वर्ण तो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा स वाग्रजो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु सरु अपराधता। महाभाष्य अर्थात स्वर या वर्ण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग वांछित अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाता, ऐसा अशुद्ध प्रयोग प्रयोक्ता को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार इंद्र शत्रु शब्द में स्वर का गलत प्रयोग करने से वृत्त का नाश हो गया। ध्वनि का संवहन। भाषा दो प्रकार की होती है, एक कान की और दूसरी आँख की। कान की भाषा प्रकृति की देन है और आँख की भाषा सभ्यता की। जिसे कान से ग्रहण करते हैं वह वाणी या उच्चरित भाषा है और जिसे आँख से ग्रहण करते हैं वह लिपि या लिखित भाषा है। दोनों के ग्रहण के माध्यम में भी अंतर पड़ता है। उच्चरित भाषा का संबंध ध्वनि से है और लिखित भाषा का प्रकाश है। ध्वनि न हो तो उच्चरित भाषा का ग्रहण नहीं हो सकता। यदि कोई केवल जीभ और ओठ हिलाकर रह जाए तो ध्वनि नहीं उत्पन्न हो सकती और न कान सुन सकता है। इसी प्रकार यदि प्रकाश न हो तो लिखित भाषा का ग्रहण संभव नहीं होगा। अच्छी से अच्छी मुद्रित पुस्तकें अंधकार में नहीं पढ़ी जा सकती। ध्वनि और प्रकाश दोनों का अध्ययन भौतिक विज्ञान का विषय है, किंतु भाषा के उच्चरित और लिखित प्रयोगों रूपों में उनका संबंध होने के कारण भाषा विज्ञान के अध्ययन के प्रसंग में भी उनका परिचय अपेक्षित है। कान और आँख की भाषा का अंतर अनेक प्रकार से देखा जा सकता है। अर्थ भाव या विचार का संकेत ध्वनि है और ध्वनि का संकेत लिपि, अर्थात हम जो सोचते विचारते हैं उसे कुछ ध्वनियों की सहायता से व्यक्त करते हैं और ध्वनियों को लिपि की सहायता से अंकित करते हैं। ध्वनि और लिपि दोनों भाव या विचार के संकेत हैं, पर दोनों के ग्रहण में अंतर है। ध्वनि का ग्रहण कानों से होता है और लिपि का आँखों से। कान जिस रूप में ध्वनि ग्रहण करने के अभ्यस्त हैं उससे भिन्न ध्वनि पड़ने पर अर्थ समझ में नहीं आता। वैसे ही आँखें शब्द के जिस लिखित रूप को देखने के अभ्यस्त हैं उससे भिन्न रूप सामने आने पर उसका अर्थ समझ में नहीं आता। उदाहरणार्थ यदि कानों को लाउथ सुनना पड़े तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा और आँखों के सामने यदि लाफ आ जाए तो कोश उलटने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बात यह है कि कान लाफ सुनने के अभ्यस्त हैं और आँखें लाफ देखने की। इसमें अंतर हो जाने पर दोनों इंद्रियों की कठिनाई होती है। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों को भी विभिन्न रूप आँख और कान के अभ्यस्त हैं। उच्चरित रूप, लिखित रूप, दो दाओ, थ्रू थ्रो, रूफ रफ, भात दाल भात दाल, मोहन मोहन, अब तक। ऊपर के उदाहरणों को देखने स्पष्ट हो जाता है कि आँख और कान की भाषा एक ही नहीं होती। इसलिए जब आँख की भाषा कान के सामने या कान की भाषा आँख के सामने आती है तो दोनों को उलझन होती है। कान और आँख की भाषा में कई अंतर है। पहला, कान की भाषा अर्थात उच्चरित भाषा मुख ओष्ठ जिह्वा नासिका आदि की सहायता से उत्पन्न होती है और श्रोत्र कान के द्वारा ग्रहित होती है। लिखित भाषा हाथ या यंत्र से निर्मित होती है और उसका ग्रहण आँख के द्वारा होता है। दूसरा, जैसा भाषा के विकास सोपान वाले अध्याय में देखा जा चुका है, उच्चरित भाषा अस्थायी होती है और लिखित भाषा अस्थायी। दूसरे शब्दों में उच्चरित भाषा देश काल के संबंध से आबद्ध होती है तो लिखित भाषा मुक्त। तीसरा, उच्चरित भाषा सजीव होती है अर्थात तान आघात लय आदि की सहायता से यह भावबोधन में अधिक समर्थ होती है। उससे प्रेम क्रोध उत्साह आनंद आश्चर्य रीज खीज आवेश उत्कंठा भय उदासीनता आदि की अभिव्यक्ति होती चलती है, किंतु लिखित भाषा निर्जीव होती है क्योंकि वह तान आघात लय आदि के भंगिमाओं से वंचित रहती है। इन भंगिमाओं को ही हम अनेक विराम चिन्हों से अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं, फिर भी लिखित भाषा में वह विशेषता नहीं आ पाती जो उच्चरित भाषा में। चौथा, उच्चरित भाषा का माध्यम एकमात्र वायु तरंग है, किंतु लिखित भाषा के अनेक माध्यम हैं। पत्थर मिट्टी लकड़ी चमड़ा पेड़ की छाल पत्ता कागज आदि झंडों या लाल हरी पत्तियों के संकेत भाषा भी आँखों के लिए ही। पांचवा, कान और आँख की भाषा की गति में भी अंतर होता है। कान की भाषा अर्थात ध्वनि की गति 1100 फुट प्रति सेकंड है, पर प्रकाश की 186,000 मील प्रति सेकंड। आज का संसार ध्वनि का संसार है, चाहे तो उसे शब्द या कोलाहल भी कह दीजिए, जिधर जाइए उधर ही ध्वनि। सच पूछिए तो प्रत्येक नया आविष्कार किसी न किसी प्रकार से ध्वनि की ही वृद्धि करता है। रेल मोटर हवाई जहाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, तार के टिक टिक टेलीफोन की घंटी रेडियो के गाने सब किसी न किसी रूप में ध्वनि का ही प्रसार करते हैं। लिपि या भाषा का विस्तृत विवेचन लिपि के प्रकरण में होगा। यहाँ कान की भाषा अर्थात ध्वनि की चर्चा का प्रसंग होने से उसे संवहन पक्ष पर थोड़ा विचार आवश्यक है। यद्यपि ध्वनि का ग्रहण कानों से होता है, फिर भी ध्वनि संबंधी पूरी जानकारी के लिए अनेक अन्य वस्तुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ध्वनि किसी वस्तु में उत्पन्न होती है, कहीं से चलकर हमारे पास पहुँचती है। इसमें तीन वस्तुएँ अपेक्षित हैं, उत्पादक, वाहक यानी माध्यम और ग्राहक। ध्वनि का उत्पादक कुछ भी हो सकता है, जैसे तार, धातु, काठ, कंठ आदि। ग्राहक केवल कान है। वक्ता और श्रोता के बीच जो वायु है, वायु वाहक या माध्यम का काम करती है। वायु के अतिरिक्त लोहा जैसी ठोस वस्तु के माध्यम का काम कर सकती है, किंतु किसी द्रव्य या लोहे से भी ध्वनि का संबंध तभी हो सकता है जब वहाँ वायु विद्यमान हो। वायु बिल्कुल न होने पर ध्वनि नहीं सुनाई पड़ सकती है। उत्पादक द्रव्य में कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति होती है और कंपन प्रायः किसी न किसी आघात से उत्पन्न होता है। वीड़ा या सितार के तार हो तो अथवा तबले या मृदंग का चरम पटल हो तो अंगुलियों से उन पर आघात करना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें कंपन होता है और ध्वनि निकलती है। कंपन का रूप तार वाले बाजे पर बड़ी आसानी और स्पष्टता से देखा जा सकता है। एक बार खींचने पर तार में काफ़ी देर तक कंपन होता रहता है। यह कंपन ही ध्वनि का उत्पादक है, किंतु प्रत्येक कंपन सुनाई नहीं पड़ सकता। सुनने योग्य कंपन की एक सीमा होती है, उससे कम या अधिक होने पर वह सुनाई नहीं पड़ता। वायु तरंगों पर तैरती हुई ध्वनियों के कंपन जब कान के पर्दों को छूते हैं तो पर्दे भी कंपित हो उठते हैं, जिससे श्रुति तंतुओं ऑडिटरी नर्व्स में स्पंदन उत्पन्न होता है। इसे ही श्रवण कहते हैं। मस्तिष्क को ध्वनि का ज्ञान श्रवण से ही होता है। जब किसी वस्तु में कंपन होता है तो उसके चारों ओर की वायु में क्षोभ या आंदोलन उत्पन्न होता है, जो वायु में मंडलाकार फैलता है। जिस प्रकार शांत जल वाले तालाब में कंकड़ी फेंकने से लहरें उत्पन्न होकर मंडलाकार चारों दिशाओं में फैलने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार वायुमंडल में भी तरंगे फैलती हैं। वायु का प्रत्येक कण समीपवर्ती कण से आहत होकर कंपित स्पंदित हो उठता है। यह क्रमिक आघात या स्पंदन ही तरंगों का रूप धारण कर लेता है और वायु के एक एक कण से होती हुई ध्वनि प्रातव्य तक पहुंच जाती है। मुख से या किसी भौतिक द्रव्य से उत्पन्न ध्वनि की शक्ति कम होने से वह बहुत दूर तक सुनाई नहीं पड़ती। उसे ही यदि अधिक शक्ति संपन्न बना दिया जाए तो हजारों मील की दूरी पर सुनी जा सकती है, जैसा रेडियो में होता है। इंग्लैंड या अमेरिका से रेडियो पर बोलने वाला व्यक्ति सामान्य रूप से ही बोलता है, कोई चीखता चिल्लाता नहीं, पर उसकी ध्वनि को यंत्रों की सहायता से विस्तारित कर ऐसा बना दिया जाता है कि वह संसार को किसी कोने में सुनाई दे सके। ध्वनि के अनेक भौतिक गुण होते हैं, तीन प्रमुख हैं। पहला, तारता यानी पिच। तारता का संबंध कंपन की आवृत्ति से। ध्वनि उत्पादक वस्तु में जितनी आवृत्ति बढ़ेगी उतनी ही तारता बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि जब बिजली का पंखा धीमे धीमे चलता है तो उससे कम आवाज़ निकलती है, किंतु जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती जाती है वैसे वैसे आवाज़ भी बढ़ती जाती है। दूसरी बात यह है कि आवृत्ति का संबंध उत्पादक वस्तु की लंबाई, मोटाई, घनत्व और लचीलापन आदि कारणों से भी है। इससे विभिन्न आकार के एक ही द्रव्य या धातु से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। पुरुष की ध्वनि से स्त्री की ध्वनि में, सयाने की ध्वनि से बच्चे की ध्वनि में इसी कारण अंतर दिखाई देता है। ध्वनि की सभी आवृत्तियाँ श्रव्य नहीं हुआ करती। 16 से कम और 38,000 से अधिक की आवृत्तियाँ श्रव्य नहीं होती। दूसरा, तीव्रता, इंटेंसिटी। तीव्रता ध्वनि के जोर को कहते हैं, जो कंपन के विस्तार पर निर्भर है। कंपन का विस्तार जितना अधिक होगा तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। बात यह है कि कंपन विस्तार से वायु में सघनता आती है और उस सघनता से कान के पर्दे पर अधिक दबाव पड़ता है। स्वभावतः सघनता जितनी अधिक होती है कान के पर्दे पर आघात की शक्ति भी उतनी बढ़ जाती है। तारता और तीव्रता में भ्रम नहीं होना चाहिए। तारता ध्वनिक उत्पादक वस्तु की आवृत्ति पर निर्भर करती है और तीव्रता उसके कंपन विस्तार पर। तीसरा, भेदकता यानी टिम्बर। भेदकता टिम्बर ध्वनि का वह गुण है जो विभिन्न वस्तुओं से उत्पन्न ध्वनियों का अंतर बताता है। उदाहरणार्थ वीणा और सितार, तबले या मृदंग, लकड़ी या लोहे की ध्वनि में जो अंतर है उसका पार्थक्य वेदकता की सहायता से जाना जा सकता है। मेरी ध्वनि आपकी ध्वनि से भिन्न है और मुझे या आपसे परिचित व्यक्ति अंधकार में भी हमारी आवाज़ सुनकर हमें पहचान लेते हैं। यह ज्ञान वेदकता के कारण ही होता है। किसी की आवाज मोटी कही जाती है, किसी की पतली, किसी की कोमल, किसी की कठोर, यह सब वेदकता का ही परिणाम है। ध्वनियों के इस अंतर का एक प्रधान कारण यह है कि कोई दो वागिंद्रियां सर्वथा एक रूप नहीं होती। दूसरा कारण यह भी है कि अनुनादक विवरों की कोमल और कठोर दीवारों का भी ध्वनि पर असर पड़ता है। वेदकता या टिम्बर के अंतर का तीसरा कारण भी माना गया है और वह है श्रोता का मनोविभ्रम। इसीलिए कभी कभी किसी आवाज़ को सुनने पर उसमें दूसरे की आवाज़ का भ्रम हो जाता है। आपने देखा होगा कि किसी दूसरे बच्चे का रोना सुनकर माँ उसे अपने बच्चे का रोना समझकर उत्कंठापूर्वक आहट लेने लगती है या जिधर से आवाज़ आती है उधर दौड़ पड़ती है। बाद में पता चलता है कि वह रोदन उसके बच्चे का नहीं किसी दूसरे के बच्चे का था।